नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। टाटा समूह द्वारा एयर इंडिया का अधिग्रहण पूरा किए जाने के एक वर्ष पूरा होने के मौके पर एयरलाइन ने शुक्रवार को कहा कि वह नए विमानों के ऐतिहासिक ऑर्डर को पूरा कर रही है। एयरलाइन के प्रमुख कैंपबेल विल्सन ने इस अवसर पर कहा कि विमानन क्षेत्र की कंपनी ने उल्लेखनीय प्रगति की है। एयर इंडिया 2.0 के दूसरे वर्ष में प्रवेश करने के मौके पर विल्सन ने कर्मचारियों को भेजे संदेश में कहा कि आगे का रास्ता चुनौतीपूर्ण रहने वाला है और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमें सफलता से कहीं अधिक परिभाषित ये बात करेगी कि हम खामियों को लेकर हमारा रुख कैसा होता है। एयरलाइन ने अपने रूपांतरण के लिए अगले 5 साल की रूपरेखा vihan.ai के तहत तय की है, जिसमें विभिन्न कदम उठाए जाएंगे और कंपनी अपने चौड़े विमानों के बेड़े का आंतरिक स्वरूप बदलने के लिए $40 करोड़ का निवेश करेगी। अडानी समूह के शेयर शुक्रवार को भी दबाव में रहे और शुरुआती सौदों में इनमें 20% की गिरावट आई। अमेरिकी वित्तीय शोध कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने समूह पर कई आरोप लगाए हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में उद्योगपति गौतम अडानी की अगुवाई वाले समूह पर खुले तौर पर शेयरों में गड़बड़ी और लेखा धोखाधड़ी में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। कंपनी के इस आरोप के बाद विविध कारोबार से जुड़े समूह की सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट आई। अडानी टोटल गैस के शेयर 19.65% गिरे, अडानी ट्रांसमिशन के 19%, अडानी ग्रीन एनर्जी के 15.50% और अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर में 6.19% की गिरावट आई। वहीं अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के शेयर 5.31% गिरे, अडानी विल्मर के 5% और अडानी पावर के शेयर में 4.99% की गिरावट आई। दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कंपनी ज्योति लैब्स लिमिटेड का 31 दिसंबर 2022 को खत्म चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में समेकित शुद्ध लाभ 77.25% बढ़कर 67.39 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी ने शेयर बाजारों को ये जानकारी दी। इसमें उसने बताया कि पिछले वर्ष की समान अवधि में उसका समेकित शुद्ध लाभ 38.02 करोड़ रुपए था। इसके अलावा परिचालन से प्राप्त समेकित राजस्व समीक्षाधीन तिमाही में 612.67 करोड़ रुपए रहा। पिछले वर्ष समान अवधि में ये 539.03 करोड़ रुपए था। ज्योति लैब्स लिमिटेड की प्रबंध निदेशक MR ज्योति ने कहा, पहुंच को बढ़ाने के लिए हमारी प्रदर्शन आधारित वृद्धि जारी है। इससे सभी हितधारकों का मूल्य बढ़ेगा, भविष्य में भी वृद्धि की निरंतर गति जारी रहेगी। रियल्टी क्षेत्र की कंपनी DLF लिमिटेड की अगले महीने गुरुग्राम में महंगी आवासीय परियोजना पेश करने की योजना है, जिसका अनुमानित बिक्री राजस्व करीब 7,500 करोड़ रुपए होगा। DLF समूह के कार्यकारी निदेशक एवं मुख्य व्यवसाय अधिकारी आकाश ओहरी ने PTI भाषा को बताया कि कंपनी की योजना इस आवासीय परियोजना में करीब 1100 अपार्टमेंट बनाने की है। उन्होंने कहा, गुरुग्राम के सेक्टर 63 में महंगी आवासीय परियोजना की पेशकश अगले महीने करने की योजना है। इसका अनुमानित बिक्री राजस्व करीब 7,500 करोड़ रुपए होगा। ओहरी ने कहा, विभिन्न मूल्य बिंदुओं पर रियल एस्टेट की मांग बहुत मजबूत है, विशेषकर भरोसेमंद डेवलपरों के उत्पादों के लिए। DLF की बिक्री बुकिंग चालू वित्त वर्ष की अप्रैल दिसंबर अवधि के दौरान 45% की वृद्धि के साथ 6,599 करोड़ रुपए रही है और सालाना बिक्री 8,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। पिछले वर्ष समान अवधि में ये आंकड़ा 4,544 करोड़ रुपए रहा था। वाणिज्य मंत्रालय ने घरेलू टाइल्स उद्योग को संरक्षण देने के लिए चीन एवं ताइवान से आयात किए जाने वाले सस्ते विनाइल टाइल्स पर 5 साल के लिए डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है। मंत्रालय के तहत गठित व्यापार उपचार महानिदेशालय ने अपनी अनुशंसा में कहा कि चीन एवं ताइवान से आयात किए जाने वाले विनाइल टाइल्स पर शुल्क लगाया जाए। महानिदेशालय ने अपनी जाँच में पाया कि इन देशों से भारत में विनाइल टाइल्स को बेहद सस्ती दरों पर निर्यात किया जा रहा है। इसका प्रतिकूल असर घरेलू टाइल्स उद्योग पर पड़ रहा है। DGTR ने एक अधिसूचना में कहा कि इन देशों से टाइल्स के आयात पर 5 साल के लिए डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की जाती है। विनाइल टाइल्स का इस्तेमाल घरों एवं वाणिज्यिक इमारतों में फ्लोरिंग के लिए किया जाता है। ये देखने में प्राकृतिक लगती है, लेकिन ये असल में PVC से बनी होती है। चीन एवं ताइवान से सस्ती विनाइल टाइल्स के आयात की शिकायत वेल्सपन फ्लोरिंग लिमिटेड और वेल्सपन इंडिया लिमिटेड ने की थी। कमजोर हाजिर मांग के कारण सटोरियों द्वारा अपने सौदों का आकार घटाने से वायदा कारोबार में शुक्रवार को सोने की कीमत 365 रुपए घटकर 57,100 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल में आपूर्ति वाले अनुबंध का भाव 365 रुपए यानी 0.64% की गिरावट के साथ 57,100 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। इसमें 17,033 लॉट का कारोबार हुआ। बाजार विश्लेषकों ने कहा कि कारोबारियों द्वारा अपने सौदों की कटान करने से सोना वायदा कीमतों में गिरावट आई। महाराष्ट्र में एक निर्माण कंपनी और उसके साझेदार को 1986 में बेचे गए फ्लैट की बिक्री दस्तावेज नहीं देने के कारण 45 लोगों को 30,000 रुपए मुआवजा देना होगा। ठाणे जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंच ने ये फैसला सुनाया। इन लोगों ने 1986 में महाराष्ट्र के वसई में कंपनी की परियोजना में फ्लैट खरीदे थे। हालांकि इतने साल बीत जाने के बावजूद संपत्तियों की खरीद के संबंध में बिक्री दस्तावेज नहीं दिए गए। मंच के अध्यक्ष वीसी प्रेमचंदानी और इसकी सदस्य पूनम वी महर्षि ने पराजम्पे कंस्ट्रक्शन कंपनी और उसके भागीदार जयंत मोरेश्वर पराजम्पे को 30 दिनों के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया। आदेश 13 जनवरी को पारित किया गया था। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।